आप सुन रहे हैं अमर उजाला आवाज।
मंटो का अफसाना अंजाम बखैर। बंटवारे के बाद जब फिरका वाराना फसादात शिद्दत इख्तियार कर गए और जगह जगह हिंदुओं और मुसलमानों के खून से जमी रंगी जाने लगी, तो नसीम अख्तर, जो दिल्ली की नौखेज तवायफ थी, अपनी बूढ़ी माँ से कहा, चलो माँ यहां से चले। बूढ़ी नायिका ने अपने पोपले मुंह में पानदान से छालिया के बारीक बारीक टुकड़े डालते हुए उससे पूछा, कहाँ जाएंगे बेटा? पाकिस्तान। ये कहकर वो अपने उस्ताद खान साहब अच्छन खान से मुखातिब हुई। खान साहब, आपका क्या ख्याल है, यहां रहना अब खतरे से खाली नहीं? खान साहब ने नसीम अख्तर की हां में हां मिलाई। तुम कहती हो तो, मगर बाई जी को मना लो तो सब चलेंगे। नसीम अख्तर ने अपनी मां से बहतेरा कहा कि चलो अब यहां हिंदुओं का राज होगा, कोई मुसलमान बाकी नहीं छोड़ेंगे। बुढ़िया ने कहा, तो क्या हुआ, हमारा धंधा तो हिंदुओं की बदौलत ही चलता है और तुम्हारे चाहने वाले भी सब के सब हिंदू ही हैं, मुसलमानों में रखा ही क्या है? ऐसा ना कहो, उनका मजहब और हमारा मजहब एक है। कायदे आजम ने इतनी मेहनत से मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनाया है, हमें अब वहीं रहना चाहिए। मांडू मिरासी ने अफीम के नशे में अपना सिर हिलाया और गनुदगी भरी आवाज में कहा, छोटी भाई, अल्लाह सलामत रखे तुम्हें, क्या बात कही है, मैं तो अभी चलने के लिए तैयार हूं, मेरी कब्र भी बनवाओ तो रूह खुश रहेगी। दूसरे मिरासी थे, वो भी तैयार हो गए, लेकिन बड़ी बाई दिल्ली छोड़ना नहीं चाहती थी। बाला खाने पर उसी का हुक्म चलता था, इसलिए सब खामोश हो गए। बड़ी बाई ने सेठ गोविंद प्रकाश की कोठी पर आदमी भेजा और उसको बुलाकर कहा, मेरी बच्ची आजकल बहुत डरी हुई है, पाकिस्तान जाना चाहती थी, मगर मैंने समझाया वहां क्या धरा है, यहां आप ऐसे मेहरबान सेठ लोग मौजूद हैं, वहां जाकर हम उपले थापेंगे, आप एक करम कीजिए। सेठ बड़ी बाई की बातें सुन रहा था, मगर उसका दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। एकदम चौंक कर उसने बड़ी बाई से पूछा, तो क्या चाहती है? हमारे कोठे के नीचे 2-3 हिंदुओं वाले सिपाहियों का पहरा खड़ा कर दीजिए, ताकि बच्ची का सहम दूर हो जाए। सेठ गोविंद प्रकाश ने कहा, यह कोई मुश्किल नहीं, मैं भी जाकर सुपरिटेंडेंट पुलिस से मिलता हूं, शाम से पहले पहले सिपाही मौजूद होंगे। नसीम अख्तर की मां ने सेठ को बहुत दुआएं दी। जब वो जाने लगा तो उसने कहा, समाज अपनी बाई नसीम अख्तर का मुजरा सुनने आएंगे। बुढ़िया ने उठकर ताजीमन कहा, आए जमजम आइए, आपका अपना घर है, बच्ची को आप अपनी कनीज समझिए, खाना यहीं खाइएगा।
नहीं, मैं आजकल परहेजी खाना खा रहा हूं।
ये कहकर वो अपनी तोन पर हाथ फेरता चला गया। शाम को नसीम की मां ने चांदनियां बदलवाई, गांव तकियों पर नए गिलाफ चढ़वाए, ज्यादा रोशनी के बल्ब लगवाए, सेठ के लिए आला किस्म के सिगरेटों का डिब्बा मंगवाने भेजा। थोड़ी ही देर के बाद नौकर हवास बाख्ता हाफता कांपता वापस आ गया। उसके मुंह से एक बात नहीं निकलती थी। आखिर जब वो कुछ देर के बाद संभला तो उसने बताया कि चौक में 5-6 सिखों ने एक मुसलमान ख्वांचा फरोश को कृपाणों से उसकी आंखों के सामने टुकड़े टुकड़े कर डाला। जब उसने ये देखा तो सर पर पांव रखकर भागा और यहां आन के दम लिया। नसीम अख्तर ये खबर सुनकर बेहोश हो गई। बड़ी मुश्किलों से खान साहब अच्छन खान उसे होश मिलाए, मगर वो बहुत देर तक निढाल रही और खामोश खला में देखती रही। आखिर उसकी मां ने कहा, खून खराबे होते ही रहते हैं, क्या इससे पहले कत्ल नहीं होते थे? दम दिलासे के बाद नसीम अख्तर संभल गई तो उसकी मां ने उससे बड़े दुलार और प्यार से कहा, उठो मेरी बच्ची, जाओ विश्वास पहनो, सेठ आते ही होंगे। नसीम ने बादले नाख्वास्ता पेशवाज अपनी 16 सिंगार किए और मसनद पर बैठ गई। उसका जी भारी भारी था। उसको ऐसा महसूस होता था कि उस मकतूल ख्वांचा फरोश का सारा खून उसके दिलो दिमाग में जम गया है। उसका दिल अभी तक धड़क रहा था। वो चाहती थी कि जरखबर्ग पिशवास की बजाय सादा शलवार कमीज पहन ले और अपनी माँ से हाथ जोड़कर बल्कि उसके पांव पड़कर कहे कि खुदा के लिए मेरी बात सुनो और भाग चलो यहाँ से, मेरा दिल गवाही देता है कि हम पर कोई ना कोई आफत आने वाली है। बुढ़िया ने झुंझुला कर कहा, हम पर क्यों आफत आने लगी, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है। नसीम ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया, उस गरीब ख्वांजा फरोश ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो जालिमों ने उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। बिगाड़ने वाले बच जाते हैं, मारे जाते हैं वो जिन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा होता।
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है,
ऐसे हालात में किसका दिमाग दुरुस्त रह सकता है, चारों तरफ खून की नदियां बह रही हैं। ये कहकर वो उठी, बालकनी में खड़ी हो गई और नीचे बाजार में देखने लगी। उसे बिजली के खंभे के पास चार आदमी खड़े दिखाई दिए जिनके पास बंदूकें थी। उसने खान साहब खान को बुलाया और वो आदमी दिखाए। ऐसा लगता है कि वही सिपाही हैं जिनको भेजने का वादा सेठ कर गया था। खान साहब अच्छन खान ने उन आदमियों को अपनी चुंधी आंखों से बगौर देखा।
नहीं, ये सिपाही नहीं, सिपाहियों की तो वर्दी होती है, मुझे तो गुंडे मालूम होते हैं।
नसीम अख्तर का कलेजा धक से रह गया।
गुंडे? अल्लाह बेहतर जानता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लो ये तुम्हारे कोठे की तरफ आ रहे हैं। देखो नसीम, तुम किसी बहाने से ऊपर कोठे पर चली जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आता हूं, मुझे दाल में काला नजर आता है।
नसीम अख्तर चुपके से बाहर निकली और अपनी मां से नजर बचाकर ऊपर की मंजिल पर चली गई। थोड़ी देर के बाद खान साहब अच्छन खान अपनी चुंधी आंखें झपकाता हुआ ऊपर आया और जल्दी से दरवाजा बंद करके कुंडी चढ़ा ली। नसीम अख्तर, जिसका दिल जैसे डूब रहा था, खान साहब से पूछा,
क्या बात है? वही जो मैंने समझा था, तुम्हारे मुतालिक पूछ रहे थे, कहते थे सेठ गोविंद प्रकाश ने कार भेजी है और बुलाया है।
तुम्हारी माँ बड़ी खुश हुई, बड़ी मेहरबानी उनकी। मैं देखती हूँ कहाँ है, शायद गुसलखाने में हो, इतनी देर में मैं तैयार हो जाऊं। उन गुंडों में से एक ने कहा,
तुम्हें क्या शहद लगाकर चाटेंगे, बैठी रहो जहां बैठी हो, खबरदार जो तुम यहां से हिली, हम खुद तुम्हारी बेटी को ढूंढ लेंगे।
मैंने जब ये बातें सुनी और उन गुंडों के बिगड़े हुए तेवर देखे तो खिसकता खिसकता यहां पहुंच गया।
नसीम अख्तर हवास बाख्ता थी,
अब क्या किया जाए?
खान ने अपना सिर खुजलाया और जवाब दिया,
देखो मैं कोई तरकीब सोचता हूं, बस यहां से निकल भागना चाहिए। और मां? उसके मुतालिक मैं कुछ नहीं कह सकता, उसको अल्लाह के हवाले करके खुद बाहर निकलना चाहिए।
ऊपर चारपाई पर दो चादरें पड़ी हुई थी। खान साहब ने उनको गांठ देकर रस्सा बनाया और मजबूती से कुंडे के साथ बांधकर दूसरी तरफ लटका दिया। नीचे लॉन्ड्री की छत थी, वहां तक अगर वो पहुंच जाए तो आगे रास्ता साफ था। लॉन्ड्री की छत की सीढ़ियां दूसरी तरफ थी, उसके जरिए से वो तबेले में पहुंच जाते और वहां साइज से जो मुसलमान था तांगा लेते और स्टेशन का रुख करते। नसीम अख्तर ने बड़ी बहादुरी दिखाई, आराम आराम से नीचे उतरकर लॉन्ड्री की छत तक पहुंच गई। खान साहब अच्छन खान भी बाहिफाजत तमाम उतर आए। अब वो तबेले में थे, साइज इत्तेफाक से तांगे में घोड़ा जोत रहा था। दोनों उसमें बैठे और स्टेशन का रुख किया, मगर रास्ते में उनको मिलिट्री का ट्रक मिल गया। उसमें मुसल्ले फौजी मुसलमान थे जो हिंदुओं के खतरनाक मोहल्लों से मुसलमानों को निकालकर महफूज मकामात पर पहुंचा रहे थे। जो पाकिस्तान जाना चाहते उनको स्पेशल ट्रेनों में जगह दिलवा देते। तांगे से उतरकर नसीम अख्तर और उसका उस्ताद ट्रक में बैठे और चंद मिनटों में स्टेशन पहुंच गए। स्पेशल ट्रेन इत्तेफाक से तैयार थी, उसमें उनको अच्छी जगह मिल गई और वो बखैरियत लाहौर पहुंच गए। यहाँ वो करीब करीब एक महीने तक वाल्टन कैंप में रहे। निहायत कसम पुरसी की हालत में इसके बाद वो शहर चले आए। नसीम अख्तर के पास काफी जेवर था जो उसने उस रात पहना हुआ था जब सेठ गोविंद प्रकाश उसका मुजरा सुनने आ रहा था। ये उसने उतार कर खान साहब अच्छन खान के हवाले कर दिया था। उन जेवरों में से कुछ बेचकर उन्होंने होटल में रहना शुरू कर दिया, लेकिन मकान की तलाश जारी रही। आखिर बदिक्कत तमाम हीरा मंडी में एक मकान मिल गया जो अच्छा खासा था। अब खान साहब अच्छन खान ने नसीम अख्तर से कहा, गद्दे और चांदनियां वगैरह खरीद लें और तुम बिस्मिल्लाह करके मुजरा शुरू कर दो। नसीम ने कहा, नहीं खान साहब, मेरा जीव उतार गया है। मैं तो इस मकान में भी रहना पसंद नहीं करती। किसी शरीफ मोहल्ले में छोटा सा मकान तलाश कीजिए ताकि मैं वहां उठ जाऊं। मैं अब खामोश जिंदगी बसर करना चाहती हूं। खान साहब को यह सुनकर बड़ी हैरत हुई। क्या हो गया तुम्हें? बस जी उचाट हो गया है। मैं इस जिंदगी से किनारा कशी इख्तियार करना चाहती हूं। दुआ कीजिए खुदा मुझे साबित कदम रखे। ये कहते हुए नसीम की आंखों में आंसू आ गए। खान साहब ने उसको बहुत तरगीब दी पर वो टस से मस ना हुई। एक दिन उसने अपने उस्ताद से साफ कह दिया कि वो शादी कर लेना चाहती है, अगर किसी ने उसको कबूल ना किया तो वो कुमारी रहेगी। खान साहब बहुत हैरान थे कि नसीम में तब्दीली कैसे आई। फसादात तो इसका बायस नहीं हो सकते। फिर क्या वजह थी कि वो पेशा तर्क करने पर तुली हुई थी और शादी करके शरीफाना जिंदगी बसर करना चाहती थी। जब वो उसे समझा कर थक गए तो उसे एक मोहल्ले में जहां शुरफा रहते थे एक छोटा सा मकान ले दिया और खुद हीरा मंडी के एक मालदार तवायफ को तालीम देने लगे। नसीम ने थोड़े से बर्तन खरीदे, एक चारपाई और बिस्तर वगैरह भी, एक छोटा लड़का नौकर रख लिया और सुकून की जिंदगी बसर करने लगी। पांचों नमाजें पढ़ती, रोजे आए तो उसने सारे के सारे रखे। एक दिन वो गुसल खाने में नहा रही थी कि सब कुछ भूलकर अपनी सुरीली आवाज में गाने लगी। उसके यहां एक औरत का आना जाना था। नसीम अख्तर को मालूम नहीं था कि ये औरत शरीफों के मोहल्ले की बहुत बड़ी फापा कुटनी है। शरीफों के मोहल्ले में कई घर तबाह बर्बाद कर चुकी है, कई लड़कियों की इस्मत औने पौने दामों में बिकवा चुकी है, कई नौजवानों को गलत रास्ते पर लगाकर अपना उल्लू सीधा करती रही है। जब उस औरत ने, जिसका नाम जन्नते है, नसीम की सुरीली और मंझी हुई आवाज सुनी तो उसको मन ये ख्याल आया कि लड़की जिसका आगा है ना पीछा बड़े मार्के की तवायफ बन सकती है। चुनांचे उसने उस पर डोरे डालने शुरू कर दिए। उसको उसने कई सब्ज बाग दिखाए मगर वो उसके काबू में ना आई। आखिर उसने एक रोज उसको गले लगाया और चट चट उसकी बलाएं लेनी शुरू कर दी। जीती रहो बेटा, मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी, तुम इसमें 16 आने पूरी उतरी हो। नसीम अख्तर उसके फरेब में आ गई। एक दिन उसको यहां तक बता दिया कि वो शादी करना चाहती है क्योंकि एक यतीम कुंवारी लड़की का अकेले रहना खतरे से खाली नहीं होता। जन्नते को मौका हाथ आया। उसने नसीम से कहा, बेटा ये क्या मुश्किल है, मैंने यहां शादियां कराई हैं, सब की सब कामयाब रही हैं। अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारे हस्बे मंशा मियां मिल जाएगा जो तुम्हारे पांव धो धो कर पिएगा। जन्नते कई फर्जी रिश्ते लाई मगर उसने उनकी कोई ज्यादा तारीफ ना की। आखिर में वो एक रिश्ता लाई जो उसके कहने के मुताबिक फरिश्ता सीरत और साहिब जायदाद था। नसीम मान गई, तारीख मुकर्रर की गई और उसकी शादी अंजाम पा गई। नसीम अख्तर खुश थी कि उसका मियां बहुत अच्छा है, उसकी हर आसाइश का ख्याल रखता है। लेकिन उस दिन उसके होशो हवास गुम हो गए जब उसको दूसरे कमरे से औरतों की आवाज सुनाई थी। दरवाजे से झांक कर देखा कि उसका शौहर दो बूढ़ी तवायफों से उसके मुतालिक बातें कर रहा है। जन्नते भी पास बैठी थी, सब मिलकर उसका सौदा तय कर रहे थे। उसकी समझ में ना आया क्या करे और क्या ना करे। बहुत देर रोती सोचती रही, आखिर उठी और अपनी पिशवाज निकाल कर पहनी और बाहर निकलकर सीधी अपने उस्ताद अच्छन खान के पास पहुंची और मुजरे के साथ साथ पेशा भी शुरू कर दिया। एक इंतकामी किस्म के जज्बे के साथ वो खेलने लगी।